नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की। श्री मोदी ने यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए कैरिबियाई देश को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी, 5,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। बर्मिंघम में भारत के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड 3 विकेट पर 77 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। और विंबलडन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल रेस की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के लिए ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए इस कैरिबियाई देश को बधाई दी। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है।
प्रधानमंत्री ने आज सुबह त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव किया है।
इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूपीआई हैज रिवोल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट। नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन इंडिया। I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI.
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिक अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए पात्र होंगे, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के भारत में रह सकेंगे और काम कर सकेंगे।
आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट OCI कार्ड विल नाउ बी गिवन to the sixth generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out you. India welcomes you. And India embraces you.
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को अपनी पैतृक भूमि का दौरा करने और भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है।
प्रधानमंत्री के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की ये उनकी पहली यात्रा है। पोर्ट ऑफ स्पेन से साक्षी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में आज अर्जेंटीना जा रहे हैं। श्री मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर वहां गए हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की 57 वर्ष बाद अर्जेंटीना की ये पहली यात्रा है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अर्जेंटीना भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत और सामंजस्यपूर्ण संबंध है, जो दशकों पुराने हैं और समय के साथ और भी गहरे होते जा रहे हैं। साल 2019 से इन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल ही में 2024 में भारत और अर्जेंटीना के संबंधों को 75 वर्ष पूरे हुए। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान चर्चा के संभावित क्षेत्रों के बारे में बताया।
The two leaders will try to look at prospects of strengthening our relationship in all formats, whether it is political, economic or people-to-people contacts. There will be definitely aspects like further cooperation in certain segments, critical minerals, oil and gas, pharmaceuticals. From the अर्जेंटाइन साइड आई एम श्योर दे विल आल्सो हैव समथिंग ऑन द मेन्यू।
अर्जेंटीना के लिए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने बताया कि भारत विश्व में अपने आर्थिक स्थिति के बल पर एक काफी महत्वपूर्ण देश है।
इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया इज टुडे द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट वाज गोना बिकम 3 एट द एंड ऑफ द डेकेड। दैट्स द प्रोग्राम यू हैव हियर एंड इट इज पॉसिबल दैट यू विल अकॉम्प्लिश दैट गोल वेरी फ्यू इयर्स। सो वी थिंक दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड टू हैव अ न्यू मीटिंग विद आवर प्रेसिडेंट मिले।
दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी अब लिथियम, ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में भी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा इन संबंधों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, ब्यूनस एरिस, अर्जेंटीना।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कल से शुरू हुई 38 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा कल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल से विधिवत शुरू हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु सवेरे ही जाने शुरू हो गए।
आज सुबह पहलगाम मार्ग पर 3,000 से अधिक भक्तों को चंदनवारी की ओर जाने की अनुमति दी गई। बालतल गांदरबल बेस कैंप से 7,700 से अधिक तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 12 बजे तक 5,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस बीच 291 वाहनों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, साधुओं आदि सहित 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के एक नए जत्थे को आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। ये यात्री आज शाम तक अपने अपने बेस कैंपों पर पहुंच जाएंगे। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जुड़न कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि खेलों से अनुशासन, दृढ़ निश्चय और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि भारत में खेल राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है।
भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। देवी और स्वजनों, फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बाजीराव पेशवा ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने कहा कि सभी गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण उनमें समाहित था। श्री शाह ने कहा कि भारत के मूल स्वरूप को बचाने में बाजीराव पेशवा ने अहम योगदान दिया।
युद्ध में देशभक्ति का भाव, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूँ वो केवल श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक पारंपरिक संदेश वितरण प्रणाली से बहुत आगे निकल गया है और ये अब देश भर में 1,64,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क संचालित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि डाक विभाग शीघ्र ही डिजीपिन शुरू करेगा जो एक जियो कोडेड एड्रेस सिस्टम है। ये देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने में सक्षम होगा।
आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है तो ये डाक विभाग का एक अंग बने और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है। हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था अब उसे एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया है। तो एक CTO हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस CTO क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि देश में अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट की पहचान और विश्लेषण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि दुर्घटना के कारणों को समझा जा सके और इनसे निपटने के लिए उपाय लागू किए जा सकें। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा और नवाचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री टम्टा ने सभी हितधारकों और शिक्षाविदों को लोगों के लिए सड़क को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक वर्षा होने के बीच इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्यों में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भेजी जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों में बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 5 जुलाई से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए विभाग ने अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के कारण इस मॉनसून सीजन में अब तक 69 लोगों की मृत्यु हुई और 37 लोग अब भी लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बीते दिनों की भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई इलाकों में जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। प्रदेश में 280 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 332 बिजली ट्रांसफार्मर और 700 से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां इस मॉनसून सीजन में अब तक 20 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 31 अन्य लापता हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि NDRF और SDRF की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी अधिकारियों को प्रदेश में राहत और बचाव कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्लूरी सीताराम राजू को उनकी 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू का बलिदान सभी को प्रेरित करता रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस ने कल कहा कि उसने अफगानिस्तान के नए राजदूत का परिचय पत्र स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वो तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। एक बयान में रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे अफगानिस्तान के साथ संबंध विकसित करने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं और वो सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और नशीली दवाओं के अपराधों से निपटने में काबुल का समर्थन करना जारी रखेगा। विंबलडन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल रेस की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में बालाजी और रेस वरेला का सामना स्पेन के चौथी वरीयता प्राप्त मार्सेल ग्रेनुलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो ज़ेबालोस की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड आज 3 विकेट पर 77 रन के स्कोर से खेलना शुरू करेगा। मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। एशियाई बाजारों से कमजोर संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 83,152 पर और निफ्टी 31 अंक गिरकर 25,374 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की। श्री मोदी ने UPI भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए कैरेबियाई देश को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी। 5,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। और बर्मिंघम में भारत के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड 3 विकेट पर 77 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।